ये आकाशवाणी है। अब आप हिमांशु कांडपाल से समाचार सुनिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत को दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय ने सीबीआई से जांच कराने को मंजूरी दी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव 25 मई को होगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जामिया स्कूलों की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कैलाश गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन पर आप नेता आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले ही देख चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकती, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। गृह मंत्रालय ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार यह मामला चंद्रशेखर के इस आरोप से जुड़ा है कि सत्येंद्र जैन जब दिल्ली कैबिनेट में मंत्री थे तो उन्होंने उससे 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस संबंध में ठग चंद्रशेखर ने नवंबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव 25 मई को होगा। ये 7 सीटें हैं चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। इन सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। पर्चे 6 मई तक भरे जा सकेंगे और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मई होगी। मतगणना 4 जून को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने सभी 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर पार्टी ने सभी 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई उपाय किए हैं।
There is a program called SWEEP. It's called Systematic Voter Education and Electoral Participation. It's a very comprehensive program which addresses various issues concerning the electoral participation.
दिल्ली में करीब 1,47,00,000 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 80,00,000 मतदाता पुरुष हैं और 67,00,000 से अधिक महिलाएं हैं। वहीं पहली बार 1,80,000 से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीपेंद्र कुमार।
दिल्ली में चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने पश्चिम बिहार में आज संयुक्त रूप से प्रचार किया। पश्चिम बिहार दोनों संसदीय क्षेत्रों का सीमा क्षेत्र है और कॉलोनी के कुछ हिस्से दोनों संसदीय क्षेत्रों में आते हैं। दोनों संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र भी 2-3 स्थानों पर आपस में मिलते हैं, जिससे कॉलोनी का समग्र विकास बाधित होता है। दोनों प्रत्याशियों ने पश्चिम बिहार की सभी आरडब्ल्यूए के साथ बैठक की। उन्होंने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद वे पश्चिम बिहार की ट्रैफिक समस्या को हल करेंगे और इस कॉलोनी को हरित कॉलोनी बनाने के लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था, लेकिन बिहार में संसदीय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 संसदीय सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के लिए उम्मीदवार 2 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने होली और बिहार स्थापना दिवस के कारण राज्य में नामांकन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी। यह नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन बृहस्पतिवार था। एक रिपोर्ट।
सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में नामांकन पत्र बुधवार तक दाखिल किए गए थे और बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। पहले चरण में तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज ये घोषणा करते हुए कहा कि 27 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह होंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती निर्मला सीतारामन को समिति का संयोजक और श्री पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडी गठबंधन की कल लोकतंत्र बचाओ रैली होगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पवार गुट के शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव समेत कई अन्य नेताओं के भाग लेने की संभावना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि रैली में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए मामले उजागर हो रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर विभिन्न जिलों में अधिकारियों ने लोगों से अपने लाइसेंसी हथियार निकटवर्ती थाने या अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
राज्य में जारी शस्त्र लाइसेंसों के आधार पर लोगों के पास इस समय 2,87,000 विभिन्न किस्म के हथियार हैं। सबसे अधिक 26,229 हथियार बठिंडा जिले में है। हथियार रखने के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और 4,328 हथियार महिलाओं के नाम पर दर्ज हैं। इसमें सबसे अधिक पटियाला जिले में 453 हथियार हैं। शस्त्र अधिनियम के अनुसार एक लाइसेंस पर 2 हथियार रखे जा सकते हैं और 60,000 ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिनके पास दो दो हथियार हैं। अब सभी जिला अधिकारियों ने इन हथियारों को तत्काल पुलिस या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने को लेकर आदेश दिए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा के उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 510 ग्राम हेरोइन और एक्सयूवी कार जब्त की गई है। इस कार का उपयोग उत्तर प्रदेश के बदायूं से मादक पदार्थ दिल्ली लाने के लिए किया जाता था। दिल्ली पुलिस के अनुसार जब्त की गई हेरोइन की आपूर्ति पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में की जानी थी। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अनीश राय ने बताया कि इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 पीड़ितों ने ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में पता चला कि इस गिरोह ने करीब 400 लोगों से पैसों की ठगी की है। श्री राय ने कहा कि इस गिरोह के सदस्यों ने नेहरू प्लेस में कार्यालय खोलकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और फिर रकम लेकर फरार हो गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए जामिया स्कूलों की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा 16 केंद्रों पर ली गई। जामिया मिलिया इस्लामिया के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सईदुद्दीन ने कहा कि इन केंद्रों पर लगभग 8,200 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा कल होगी। विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। सुश्री मौसमी बसु को वर्ष 2024-25 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। सुश्री मीनाक्षी सुंदरियाल और श्री प्रदीप के शिंदे संघ के उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के दो बार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगी। आकाशवाणी से बातचीत में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार का धन्यवाद किया।
मैं बहुत खुश हूं, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बुझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।
कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी आज मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर एमएस स्वामीनाथन की बेटी सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए उनके पिता को सम्मानित किया है।
आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्हें फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले, तो इस चीज के लिए पूरा जिंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में।
चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत सिंह ने कहा कि उनके दादा को भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
शब्द नहीं है कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में वहां उस स्थान पर बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं। और मेरे परिवार के कई परिजन यहां पहुंच पाए, कई नहीं पहुंच पाए, सब लोग बहुत खुश। पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंची है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उनके हित में लिया है, उनके सम्मान में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित किए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवन की स्मृति में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। त्योहार के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे सोमवार को आनंद विहार से नई दिल्ली से पटना के लिए विशेष अनारक्षित रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी आनंद विहार से शाम को 7:20 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे गया पहुंचेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत को दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर के जबरन वसूली के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय ने सीबीआई से जांच कराने को मंजूरी दी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव 25 मई को होगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया और जामिया स्कूलों की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।